धौला पुस्तक 12वी लेक्चर नंबर 4 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोहे सौवसाहूणम् कम्मठजनियवेयण उवहि समुत्तिन्नये जिनेणमिउम् वेयण महाहियारम् विविह हियारम् परुवेमो। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य। इसमें जो चौथा खंड है उसका नाम है वेदना खंड, और उसमें अभी अपना विषय जो है वेदना भाव विधान अनुयोग द्वार, इसका अर्थ देखते हुए अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो चौथा खंड कह रहे हैं और पुस्तक तो 12वीं है। हाँ, शंका आपकी क्या है? पृष्ठ संख्या 16, 12वीं पुस्तक की बात चल रही है अपनी। 12वीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 24 पर हम आए हैं, परंतु अभी हम 16 पर की शंका देखते हैं। हाँ, क्या प्रश्न है आपका? 13वां सूत्र। हाँ, हाँ देखो यहाँ बात किसकी चल रही है। यहाँ पहले हमने जो सुनने वालों हैं उसके लिए जो वेदना किसको कहते हैं उसकी बात करेंगे, क्योंकि अभी हम पहली बार इस पर जा रहे हैं फेसबुक पर, तो ये अपना विषय क्या है उसको हम पहले देखते हैं। ये चौथा खंड है, किसमें से? 6 खंड में से, क्योंकि हमारा ये पूरा जो धर्मसेन स्वामी ने जो भूतबलि और पुष्पदंत को सिखाया उन्होंने जो लिखा है उसका नाम है षट खंडागम, उसके 6 खंड है, तो ये हमारा चौथा खंड चल रहा है। तो भूल गए ना पहला कौन सा खंड देखा था? हाँ, जीवस्थान। जीवस्थान 5 पुस्तक तो जीवस्थान चला, उसमें सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्पभूत सब देखा। 6ठी पुस्तक में उसकी चूलिका देखी हमने। 7वीं पुस्तक में खुदाबंध क्षुद्रबंध, क्योंकि महाबंध वाला 6ठा खंड अलग है, वो क्षुद्रबंध था, बंध के बारे में बिल्कुल ऑर्डिनरी सामान्य जानकारी थी। 7वें पुस्तक का नाम और दूसरा खंड खुदाबंध क्षुद्रबंध जिसको कहेंगे वो दूसरा खंड है। 8वीं पुस्तक का नाम है बंध विचय स्वामित्व और वही तीसरा खंड है। चौथा खंड 9वीं पुस्तक से शुरू हुआ है, इसका नाम है वेदना। वेदना का अर्थ होता है कर्म, कर्म को ही वेदना कहते हैं। ये शरीर में पीड़ा हो रही है वो वेदना की बात नहीं है, कर्म की बात है। तो उसमें 9वीं पुस्तक का विषय वो कृति अनुयोग द्वार था, आपको याद होगा तो। औदारिक शरीर संबंधी वैक्रिक शरीर संबंधी परमाणु लेते हैं छोड़ते हैं उसके बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी। 10वीं पुस्तक में जो हमने देखा था वहां से वेदना नाम यानी कर्मों के संबंधी उसके नाम क्या है, फिर उसमें निक्षेप लगाए थे वेदना निक्षेप 10वीं पुस्तक में, फिर उस पर नया विभाषणता लगाई थी, नयों की अपेक्षा बात की थी। और द्रव्य विधान का, द्रव्य का अर्थ होते संख्या, परमाणुओं की संख्या कहाँ कितनी है, उत्कृष्ट कहाँ है, जघन्य कहाँ है, आपको शायद याद होगा। तो हमने जिसको उत्कृष्ट संख्या वाला जो है उसको गुणित कर्मांशिक कहते हैं, और जिसके मिनिमम पॉसिबल संख्या है कर्म परमाणु की उसको क्षपित कर्मांशिक कहते हैं। वो कहाँ है, किस जीव के होते हैं, उसके क्या क्या कंडीशन है, बहुत विस्तार से हमने देखा था। वो हुई 10वीं पुस्तक। 11वीं पुस्तक भी वेदना खंड ही चल रहा था, चौथा ही खंड। उसमें हमने 2 देखे थे, वेदना क्षेत्र और वेदना काल। वेदना क्षेत्र का अर्थ होता है वेदना यानी कर्म, कर्म का क्षेत्र कितना होगा? जितनी जीव की अवगाहना है उतना कर्म का क्षेत्र होगा। फिर जीव की अवगाहना के भेद भी हमने उसमें देखे, तो उसमें कर्मों के भी उतना क्षेत्र कहेंगे। और जीव के जो समुद्घात की अपेक्षा जो जितना क्षेत्र व्याप्ता है, उस अपेक्षा से भी वेदना का उत्कृष्ट क्षेत्र वहां बताया था। उसके बहुत विस्तार से चर्चा की हमने। वेदना काल विधान जो हमने 11वीं पुस्तक में देखा था, क्षेत्र और काल। तो काल में क्या लिया कि कर्मों की कितनी स्थिति बनती है, बंध के बाद वो सत्ता में कितने काल तक रहता है, तो उसको कहेंगे वेदना काल विधान। तो जघन्य स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति, एक इंद्रियों की अपेक्षा, पंचेंद्रियों की अपेक्षा, मिथ्या दृष्टि, बहुत सारी विस्तार से हमने बात देखी थी। उसके ऊपर उसकी चूली का भी देखी, कैसे कि स्थिति बंध तो विशिष्ट होता है, परंतु स्थिति बंध के कारणभूत जो परिणाम है उसमें भी दो भेद बताए। एक तो कषाय में जो संकलेश विशुद्धि होती है वो भी, और दूसरी बात होती है उसके स्थिति बंध अध्यसान में जो अपने अपने कर्मों का उदय भी उसमें निमित्त होता है, और उसके अपेक्षा बहुत अधिक भेद पड़ते हैं जो विषय बहुत। हाँ, तो इन्हें जैसे ज्ञानावरण का अपना उदय अपने बंध में भी कुछ योगदान है उसका, उसकी अपेक्षा से परिणामों के और सूक्ष्म भेद करके बताए थे। ये अपना तो 11वीं पुस्तक का विषय हो गया। अब हमारी ये 12वीं पुस्तक शुरू होगी, अभी आज का अपना चौथा लेक्चर है। तो इसमें क्या है, वेदना भाव, वेदना का भाव, वेदना का भाव है कर्म का भाव। कर्म का भाव क्या होता है? कर्म का अपना अनुभाग, उसकी फलदान शक्ति। ये फलदान शक्ति हम अविभाग प्रतिच्छेदों में नापते हैं, पर कर्म का पूरा अनुभाग जो हम कहेंगे एक जीव को एट ए टाइम जो कर्मों का अनुभाग है, क्योंकि प्रत्येक परमाणु में जुदा जुदा अनुभाग है, तो टोटल अनुभाग जो होगा उसका जो कुछ, तो उसको कहेंगे अनुभाग का स्थान, अनुभाग स्थान। कर्मों के अनुभाग स्थान कहेंगे, तो उसकी यहाँ चर्चा है। तो पहले उसमें तीन अनुयोग द्वार आते हैं। जो पहले तीन लेक्चर में हमने क्या देखा, तो पहला नाम था उसके पद मीमांसा। पद का अर्थ होता है ये जो कर्मों का भाव उत्कृष्ट होता है क्या अनुत्कृष्ट, जो उत्कृष्ट नहीं उसको अनुत्कृष्ट कहते हैं, क्या वो जघन्य होता है क्या अजघन्य होता है। भाव यानी उसका अनुभाग, जैसे ज्ञानावरण है वो अशुभ प्रकृति है, उसका अधिक उत्कृष्ट अनुभाग कहाँ होगा वो चर्चा बाद में, अभी स्वामित्व में चलिए। पहले तो पद मीमांसा, कौन कौन से पद होते हैं उसकी पूछा की थी, तो उसमें सादी अनादि ध्रुव अध्रुव वगैरह बहुत विस्तार से। हम तो अभी उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य इतनी ही बात करेंगे। तो उसमें अभी अपना पद मीमांसा ने उसके पद बताए, ये अनुभाग ज्ञानावरण का उत्कृष्ट है कि अनुत्कृष्ट है कि जघन्य, तो कहते सभी प्रकार का है। तो सभी प्रकार का है तो ये प्रश्न होता है वो किसके होता है, उसको कहेंगे स्वामित्व। यानी ज्ञानावरण के उत्कृष्ट अनुभाग का स्वामी कौन है, स्वामी ने कौन से जीव को वो उत्कृष्ट अनुभाग होगा, तो कहेंगे जिसने उत्कृष्ट अनुभाग बांधा है उसके भी, और बांधने के बाद जब तक उसके उत्कृष्ट के उसने घटाया नहीं तब तक उसकी सत्ता में पड़ा रहेगा, तो ऐसा कौन सा जीव है, वो सब चर्चा अभी अपनी हुई थी। तो हमने पहले उत्कृष्ट अनुभाग की बात देखी थी। तो उत्कृष्ट अनुभाग किसका होता है, ज्ञानावरण का। ज्ञानावरण का उत्कृष्ट अनुभाग, हाँ, संगी, पंचेंद्रिय, मिथ्या दृष्टि, सभी पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ जीव। साकार, साकार का अर्थ होता है ज्ञानोपयोग, क्योंकि दर्शनोपयोग में जीवों की विशुद्धि भी इतनी नहीं होती और संकलेश भी इतना नहीं होता, मध्यम परिणाम होते हैं। तीसरी कंडीशन बताई थी जागृत होना चाहिए, क्योंकि नींद में वैसे ही होता है कि उसके संकलेश और विशुद्धि ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए वो जो ज्यादा तीव्र संकलेश कब हो गए तो साकार और जागृत अवस्था में। और फिर भी और कंडीशन क्या है, तीव्र संकलेश वाला जी, अधिक से अधिक संकलेश जिसके होता है तब वो ज्ञानावरण का अनुभाग का उत्कृष्ट बंध करता है। जब हमने स्थिति देखी थी उसमें भी यही कंडीशन थी, और उसमें भी स्थिति उत्कृष्ट बांधता है ज्ञानावरण की, कितनी बांधता है तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर की बांधता है। अभी हमें स्थिति से मतलब नहीं, यहाँ सभी चर्चा भावों की यानी अनुभाग की चल रही है, क्योंकि कर्म का भाव वो वेदना भाव, और उसका यहाँ जो हम चर्चा चलेंगे उसका विधान करेंगे, उसका प्ररूपणा करेंगे, ये इसका अनुयोग का नाम है। तो हमने देखा था उत्कृष्ट किसके होता है, तो हमने देखी थी बात। अब जो उत्कृष्ट नहीं है तो कौन बांधता है? तो संगी पंचेंद्रिय जो हमने कंडीशंस देखी है वो उत्कृष्ट बंध करता है, उत्कृष्ट अनुभाग को बांधता है। अब ये उत्कृष्ट अनुभाग बांधने वाले जीव, ये तो बंध की अपेक्षा बताई। सत्व का अर्थ होता है सत्ता, क्योंकि बांधने के बाद वो अनुभाग रूप जो परमाणु सत्ता में पड़े है, और ये सभी प्रत्येक निषेक में पड़े हुए होते हैं। ऐसा नहीं कि नीचे जल्दी उदय में आने वाले में कम है, ऊपर जा, ऐसा नहीं है। एक एक निषेक में जघन्य से उत्कृष्ट सारा अनुभाग पाया जाता है, परंतु उसमें से जो उत्कृष्ट है उसको पूरे जीव का अनुभाग कितना, नहीं जीवो कर्मों का अनुभाग कितना कहेंगे, तो जो मैक्सिमम पॉसिबल है उसको कहेंगे। जैसे जब हम स्थिति देखते हैं तो किसी ने ज्ञानावरण की 30 कोड़ाकोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति बांधी, तो बांधी तो सत्ता में कितनी है, तो उदय के समय से लेकर पूर्व में बांधी हुई तो थी और अभी बंधा है, तो 30 कोड़ाकोड़ी की सत्ता भी हो गई, परंतु उसके एक एक निषेक में, एक एक समय में, एक एक निषेक पड़ा है। मैक्सिमम जो है उसकी स्थिति इतनी है, ऐसा हम कहेंगे। स्थिति सत्व कितना है, तो उदय से लेकर वहां जितनी बंधी वहां तक, इतना हम कहेंगे, क्योंकि मैक्सिमम बांधी। इसलिए अब कहते हैं कि अनुभाग कितना है, तो मिनिमम से लेकर जितना मैक्सिमम बांधा है उतना है। क्योंकि गिनेंगे कहां से, पहला स्पर्धक, दूसरा स्पर्धक, तो अनंत स्पर्धक होते हैं अनुभागों के। तो जो उत्कृष्ट बनते हैं हम कहते हैं, तो मैक्सिमम जो है उसको उत्कृष्ट कहने की पद्धति है, परंतु वहां अन्य स्पर्धक नहीं है वो बात नहीं है, सभी पड़े हैं वहां पर। पर सत्ता में जो मैक्सिमम है कहेंगे ये उसका इतना अनुभाग है, उस कर्मों का अनुभाग इतना है। ऐसा नहीं है प्रत्येक स्पर्धक, सॉरी प्रत्येक निषेक में। निषेक क्या बताते हैं, स्थिति को बताता है, और जो स्पर्धक किसको बताए तो अनुभाग को बताते हैं। देखो निषेक का अर्थ है एक समान स्थिति वाले परमाणु, उसका जो एक लॉट है उसको हम निषेक कहते हैं, तो निषेक। और स्पर्धक कहते हैं अनुभाग, परंतु स्पर्धक में तो बहुत बातें होती है, क्योंकि अनंत वर्गणाओं का एक एक स्पर्धक होता है, और अनंत अनंत परमाणुओं का एक एक वर्गणा होती है, और एक एक परमाणु में अपनी अपनी फलदान शक्ति होती है, जिसको हम अविभाग प्रतिच्छेद कहेंगे। उसकी डिग्री नहीं, निषेक में समान स्थिति और वर्गणा के प्रत्येक परमाणु में समान अनुभाग, वर्गणा के एक वर्गणा के कह रहे कि पार्टी पर दिखाना, स्लेट पर दिखाना। देखो हम क्या देखते हैं, पहले हम निषेक रचना जब देखते हैं, तो बंद जब होता है, तो बंद होता है तो कुछ निषेक पहले समय से निषेक रचना नहीं होती है, कुछ काल वहां निषेक नहीं, उतने बने नहीं है, और यहाँ से एक ही समय में इतने निषेक तैयार हुए, ये तो हम समझने के लिए ऐसी निषेक रचना बताते हैं। एक समय प्रबद्ध जिसको कहेंगे, एक समय में अनंत परमाणु बनते हैं, तो उसमें स्थिति की अपेक्षा पोजिशन क्या है, तो उसको समझाने के लिए हम इसे चार्ट दिखाते हैं। ये कर्म कहीं ऐसे लाइन में खड़े नहीं होते कि नीचे मैं जल्दी चला जाऊंगा तो पैर के तरफ आगे, ऐसे कुछ नहीं होती, सर्वत्र पड़े हैं, जहां जो पड़ा है, जिसकी स्थिति मिनिमम है उसको यहाँ कहेंगे पहला निषेक। जहां 30 कोड़ाकोड़ी सागर की ज्ञानावरण की स्थिति बनती, स्थिति की बात कर रही, तो उस समय 3000 वर्ष की तो आबाधा होती है, आबाधा ने वहां कोई उस समय निषेक नहीं बनाए, उस समय सत्ता में पड़े है, हृदय में भी पड़े, ये सत्ता वाले निषेक यहाँ पड़े है सारे, और ये सत्ता वाले निषेक में ही बंध वाले निषेक उसमें समा जाएंगे। यानी टोटल स्थिति हम इतनी कहेंगे, अभी इतनी बाइंग मैक्सिमम बंधी है, परंतु वहां उदय के समय से लेकर वहां सत्ता में निषेक पड़े हैं, परंतु उस पर्टिकुलर समय में बंधा हुआ जो पहला निषेक है वो आबाधा के ऊपर है, ये उसका अर्थ होता है। ये हुई अपेक्षा, निषेक की अपेक्षा, यानी निषेक स्थितियों को बताता है। अब ये प्रत्येक निषेक में परमाणु तो अनंत है, तो उसमें अपना अपना कुछ अनुभाग भी होगा, तो वहां प्रत्येक निषेक में जघन्य अनुभाग से उत्कृष्ट अनुभाग तक जितना कुछ उसके पॉसिबल है वो सब वहां पड़ा है, तो वहां कितना अनुभाग बंध हुआ, तो हम कहेंगे जो उत्कृष्ट का नाम लेकर कहेंगे इतना बना। जैसे हम कितनी स्थिति बांधी पूछते हैं तो 30 कोड़ाकोड़ी, और पर 30 कोड़ाकोड़ी तो अंतिम निषेक की स्थिति है, कुछ परमाणु तो 3000 वर्ष और एक समय में पड़े, 3000 वर्ष और दो समय में पड़े, एक एक समय में एक एक निषेक पड़ा है, स्थिति कितनी बंधी, तो जो ऊपर की है मैक्सिमम उसका हम नाम लेते हैं। ऐसे ही अनुभाग कौन सा बांधा है, तो जो मैक्सिमम होगा उसको कहेंगे। तो तो ये मैक्सिमम के परमाणु सभी निषेकों में पड़े हैं। अगर अभी ये अनुभागों को अलग से रचना करनी है, अभी निषेक के बाद भूल जाओ, ये सभी जो परमाणु हो इन्हीं की टोटल नंबर जितने हैं अनुभाग की अपेक्षा रचना करेंगे। तो अनुभाग की अपेक्षा रचना करेंगे तो नीचे हम कम अनुभाग वाला वर्गणा देखाएंगे और ऊपर हीन अनुभाग वाले, ये अनंत होते। निषेक हमेशा असंख्यात होंगे क्योंकि अंतर्मूर्त की स्थिति बंदे या कोड़ाकोड़ियों की बंदे उसमें तो असंख्यात ही समय होते हैं। और अनुभाग में स्पर्धक अनंत होते हैं और एक एक स्पर्धक में वर्गणा अनंत होती है। ख्याल में आते हैं बात? तो अभी वर्गणा और स्पर्धक को हमको समझना है क्योंकि ये बातें बारंबार आने वाली है। जब तक ये वर्ग वर्गणा स्पर्धक नहीं समझेंगे तो अनुभाग की बात समझ में आने वाली नहीं है। चूलिका में बताएंगे बाद में, पर तो वो तो विषय बाद में आने वाला है, हम अपनी भाषा में समझेंगे यहाँ पर। तो हमें प्रत्येक निषेक में जो अनुभाग पड़ा है तो किस रूप से, तो क्यों प्रत्येक निषेक में कर्म परमाणु है, हर एक परमाणु में अपनी अपनी फलदान शक्ति है। अब ये फलदान शक्ति का हम अलग चार्ट बनाएंगे। जैसे स्कूल में जब हम जाते थे तो वहां तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर अलग होती थी, हमारे नंबरिंग अलग होता था। स्कूल में जब बिठाते तो हाइट वाइज बिठाते थे तो वो बच्चे उतने ही है, एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो उसका नंबरिंग करेंगे तो अल्फाबेटिकल अलग नंबर होगा, 50 सभी आ गए। हाइट वाइज करेंगे उसमें भी 50 के 50 है। अब कहेंगे मार्क के अकॉर्डिंगली नंबर दे दो, उसमें भी वो सभी है। अभी ये सभी परमाणुओं को हम अनुभाग की अपेक्षा उनकी लाइन लगाएंगे। तो जो जघन्य अनुभाग वाले हैं वो नीचे लिखेंगे। अब ये इसको वर्गणा कहेंगे, ये आड़ी लाइन इसका नाम था निषेक, यहाँ जो आड़ी लाइन उसका नाम है वर्गणा। तो वर्गणा में क्या है, वर्गणा में नंबर ऑफ परमाणु है। तो वर्गणा किसको कहेंगे, वर्गों के समूह को वर्गणा कहेंगे। और वर्ग किसको कहेंगे, यहाँ कर्मों की भाषा में एक कर्म परमाणु को एक वर्गणा वर्ग कहेंगे। क्यों वर्ग कहते हैं, क्योंकि उसमें अपना अपना अविभाग प्रतिच्छेद है, अपनी अपनी फलदान शक्ति है। अविभाग प्रतिच्छेद किसको कहते हैं, शक्ति के अंश को कहते हैं। यहाँ किसकी बात चल रही है, कर्मों की, तो कर्मों की शक्ति उनकी अपनी है। अगर हम ज्ञान की शक्ति नाप रहे तो ज्ञान के अपने अविभाग प्रतिच्छेद अलग है, ज्ञानावरण की अपनी शक्ति अलग है, ज्ञान की अपनी शक्ति अलग है। मापने का यूनिट क्या है, अविभाग प्रतिच्छेद। अभी हम कर्मों की बात कर रहे हैं तो कर्मों में जो अनुभाग होता है वो कैसे नापते हैं हम, तो कहते कि एक एक परमाणु में जिनमें जिनमें समान अनुभाग है, पूरे जहां जीव की अवगाहना है उतने सारे कर्म परमाणु अनंत अनंत पड़े हैं। उस समय जो बंधे हुए उसकी बात करेंगे हम, या सत्ता में की भी बात करो तो भी यही बात है। तो हम नीचे की पहली वर्गणा में ऐसे ही परमाणु यहाँ हम लेंगे या कंसीडर करेंगे, बुद्धि द्वारा करना है सब, कि जिनमें मिनिमम पॉसिबल अनुभाग होता है, इसको कहेंगे एक एक वर्ग यानी एक एक परमाणु, उसमें अपना अपना हम मान लेते 100 है, समझाने के लिए होता अनंतों में है। अविभाग प्रतिच्छेद मिनिमम भी अनंत होता है। जिनमें जिनमें मिनिमम अनुभाग है हमने 100 मान लिया, तो 100 100 100 100 वाला जो अनुभाग वाले परमाणु हम एक लाइन में लिखेंगे उसको हम कहेंगे ये पहली वर्गणा है, जिसमें एक एक 101 एक अविभाग प्रतिच्छेद एक्स्ट्रा है। ऐसे परमाणुओं को हम दूसरी लाइन में लिखेंगे। अब एक एक परमाणु की अपनी अपनी रचना अलग है, एक एक परमाणु पर केवल मूल प्रकृति नहीं, ज्ञानावरण की भी, मति ज्ञानावरण अलग, श्रुति ज्ञानावरण हर एक की अलग, और उसमें जितने असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो गए उसकी अलग। हम तो समझने के लिए मूल प्रकृति पर ले रहे हैं सामान्य से। तो हमने पहली वर्गणा किसको कहा, जिसमें सभी परमाणुओं में मिनिमम अविभाग है, हमने 100 माना था। दूसरी वर्गणा में 101 वाले परमाणु है अविभाग की, अभी इसकी स्थिति कितने, कोई भी कहीं पर भी पड़ा हो उससे मतलब नहीं है, उसकी शक्ति कितनी है, कम है। हाँ, 101 वाले, 102 वाली, 103 वाली, वह हम यही रुकते हैं। यानी 100 101 102 103 हमने चार वर्गणा देखी। मूल में कितनी होती है, अनंत होती है। इसमें कितने डिफरेंस है, एक एक का डिफरेंस है, यानी 100 101 102 103। अब क्या कहते हैं, उसके ऊपर ऐसी कोई वर्गणा ही नहीं होती 104 105 वगैरह वाली, तो क्या होता है, एकदम 100 से दुगुना वाली 200 वाली होगी। फिर 201, 202, 203, फिर गैप होगा, फिर 100, 200, फिर 300 होगी। ये 300 से यहाँ शुरू होगी, तो ये 100 से जो इतनी वर्गणा हुई वो भी अनंत होती है, फिर उसमें गैप होता है, और फिर बाद में जो पहली वर्गणा थी उससे दुगुना आगे। निषेक की बात नहीं है, वर्गणा नहीं है, यानी उतने अनुभाग वाले कोई परमाणु ही नहीं है, उतने अनुभाग वाले कोई परमाणु ही नहीं है सत्ता में। जघन्य से शुरुआत की, फॉर एग्जाम्पल 100 से 100, 101, 102, 103 बस, 104, 105, 199 तक अनुभाग वाले कोई परमाणु ही नहीं है। तो ये पहले इतनी वर्गणाओं के समूह को हम कहेंगे स्पर्धक, ये जघन्य स्पर्धक या पहला स्पर्धक हुआ, इसका नाम क्या है, स्पर्धक। इतनी वर्गणाओं का, ये वर्गणा कैसी थी, एक एक से ज्यादा होती। अब 200 से दूसरा स्पर्धक शुरू हुआ, फिर 203 तक, 300 से 303 तक तीसरा स्पर्धक, 400 से 403 तक चौथा स्पर्धक। ऐसे स्पर्धक भी अनंत होते हैं। जो मान लेते हैं ना हम, यह चौथा, अब मान लेते हैं कि 15वां है स्पर्धक है, तो वहां 1500, 1501, 1502, 1503, तो हम कितना अनुभाग बांधा, तो हम इसका नाम लेंगे उत्कृष्ट अनुभाग। पर उत्कृष्ट अनुभाग बांधा है उसमें ये सारे परमाणु इस तरह से पड़े हैं, जैसे स्थिति में हम सब देखते हैं, ऐसे अनुभाग में जो अनुभाग बांधा है तो उसमें वो जघन्य से लेकर सारे पड़े हैं वहां पर। यहां तक समझ में आई बात? तो ये किसको वर्गणा कहना, किसको स्पर्धक कहना, ये तो ये हम एक एक वर्गणा का नाम नहीं लेते हुए हम केवल स्पर्धकों का नाम लेंगे, परंतु उसमें पूरा स्थान किसको कहेंगे, ये सब मिलकर ये पूरा अनुभाग का स्थान है उस जीव का, टोटल मिलकर, यानी उसने जितने परमाणु बांधे हैं। बंध के समय की बात कर रही हूं, सत्ता की बात अलग होगी, बंध के समय उसका अनुभाग जो बांधा है तो उस अनुभाग में ये सभी इस तरह से रचना होगी। अब हम क्या देख रहे थे, ज्ञानावरण का उत्कृष्ट अनुभाग किस जीव ने बांधा है, वो संगी, पंचेंद्रिय, मिथ्या दृष्टि, वो पूरी लंबी लाइन जो हमने देखी थी कंडीशंस की, वो जो करता है वो उत्कृष्ट अनुभाग बांधता है, यानी उसके जो अनंत व जो मैक्सिमम अनंत स्पर्धक है उसने उतने बांधे। 30 कोड़ा कोड़ी से मतलब नहीं है, हाँ उसने स्थिति कितनी बांधी तो हम कहेंगे 30 कोड़ा कोड़ी, अभी हम केवल अनुभाग को कंसिडर करेंगे। तो ये उत्कृष्ट की बात हो गई, यहां तक समझ में आई बात? अब कहते कि इतनी ही सत्ता किस जीव को होगी, क्योंकि बांधने के बाद क्या होता है, उत्कृष्ट जो अनुभाग है वो हीन भी हो जाता है, उसमें भी नीचे ऊपर परमाणु होकर वो अनुभाग घटता भी है, तो इसको कहते कांडक घात होता है। जैसे संगी पंचेंद्रिय ने बांधी और एकेंद्रिय में चला गया, तो एकेंद्रिय में चला गया तो एक समय में क्या होता है, इसमें से कुछ परमाणु है उत्कृष्ट अनुभाग वाले, वो उत्कृष्ट अनुभाग वाले सभी सर्वत्र पड़े, ये सभी निषेकों में पड़े हैं, तो उत्कृष्ट अनुभाग वाले अनंत होते हैं, एक दो नहीं होते, उसमें से कुछ परमाणु थोड़े जघन्य अनुभाग वाले हो गए अपने अपने निषेक में, दूसरे समय में और कुछ हो गए, परंतु उत्कृष्ट रूप से कुछ तो रहे। अंतर्मुहूर्त में क्या होता है, जितने उत्कृष्ट थे वो सारे अंतर्मुहूर्त में अनुत्कृष्ट हो गए, एक भी अभी उत्कृष्ट परमाणु नहीं रहा, तब कहेंगे यह कांडक हुआ। तो कांडक जब तक नहीं हुआ तब तक तो उत्कृष्ट वाले कुछ न कुछ परमाणु रहे थे, तो अंतर्मूर्त काल तक उत्कृष्ट परमाणु की विद्यमानता रहेगी। तो ऐसा संगी पंचेंद्रिय जीव एकेंद्रिय में भी जावे, द्विंद्रिय में जावे, तीनद्रिय में जावे, संगी असंगी कहीं पर भी जावे, अपर्याप्तों में जावे, सूक्ष्म में जावे, बादर में जावे, उसकी इतनी सत्ता अनुभाग की है, कब तक, एक अंतर्मूर्त तक, जब तक उसका अनुभाग का कांडक पूरा नहीं हुआ, कांडक घात पूरा नहीं हुआ, ये उसका अर्थ होता है। अब यही हम आपको सूत्र में बताएंगे, ये जो हमने देखा था उत्कृष्ट किसको होता है, तो कहते हैं बांधने वाले को होता है, और सत्व उत्कृष्ट किस में होता है, तो देखो पेज नंबर 14 पर, 12वीं पुस्तक की 14वें पृष्ठ पर नीचे सूत्र लिखा है, देखो जो 9 नंबर का सूत्र है उसका सूत्र, सॉरी उसका सत्व, हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, एकेंद्रिय अथवा द्विंद्रिय अथवा तीन्द्रिय अथवा चतुरिंद्रिय अथवा पंचेंद्रिय, उसमें भी संगी हो या असंगी अथवा बादर या सूक्ष्म, क्योंकि देखो बादर सूक्ष्म भेद तो एक इंद्रिय में है, बाकी सब बादर ही है, तो सूक्ष्म भी उसमें भी हो सकता है सत्व इतना। कैसे? क्योंकि पंचेंद्रिय जीव मरकर उसमें चला गया, कोई तिर्यंश मनुष्य उसमें बांधकर चला गया है, ये हो सकता है। अथवा पर्याप्त अथवा अपर्याप्त, अन्यतर जीव, अन्यतर यानी कोई भी जीव अन्यतम गति में विद्यमान होने पर होता है, यानी किसी भी गति में उसके ये हो सकता है। अतएव उक्त जीव के ज्ञानावरणीय की वेदना, वेदना ने ज्ञानावरण कर्म भाव की अपेक्षा यानी अनुभाग की अपेक्षा उत्कृष्ट होता है। समझ में आई बात? यानी ज्ञानावरण का उत्कृष्ट अनुभाग बंध की अपेक्षा तो कंडीशंस लगाए थे, सत्व की अपेक्षा वो बांधने वाला जीव मर कर गया है, अंतर्मृत में जब तक उसने कांडघात नहीं किया है तब उसका अनुभाग का सत्व वहां पर भी पाया जाता है, ये बात अपनी हो गई थी। जो ये जिसको ये उत्कृष्ट नहीं है उसको कहेंगे इसको अनुत्कृष्ट होता है। अब जैसे हमने ज्ञानावरण की बात देखी थी तो गाहती अन्य गाहती कर्म कौन से? दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, इनमें भी यही कंडीशन होगी। अब दूसरा प्रश्न पूछा, वेदनीय का उत्कृष्ट अनुभाग कब होता है? तो वेदनीय कहने से इन जनरल, ज्ञानावरण कहने से तो सारे ही ज्ञानावरण अशुभ है, तो उसमें वो संकलेश की वगैरह वगैरह बात घटित हुई। अब वेदनीय पूछा तो वेदनीय में असाता भी वेदनीय है और साता भी वेदनीय है, और असाता कभी अपना उत्कृष्ट हो सकता है, साता कभी अपना उत्कृष्ट हो सकता है, पर ये दो उत्कृष्टों में अधिक अनुभाग किसका है? असाता के अपने अविभाग प्रतिच्छेद अलग है और साता के अपने अविभाग अलग है। मान लेते हैं ना कि असाता के 1,00,000 हो गए, तो साता के 100,00,000 हो गए, तो असाता के उत्कृष्ट से साता का उत्कृष्ट है वो अनंत गुणा है, केवल थोड़े गुणा नहीं, संख्यात गुणा भी नहीं है, अनंत गुणा है। इसलिए जब वेदनीय का उत्कृष्ट पूछेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? साता की। अब वो शुभ प्रकृति है और कब तक बनती है, कहाँ तक बनती है, बनती है नहीं, अनुभाग कहाँ तक बनता है? बनती तो 13वें को भी होती, बनती है 13वें वाले को भी बंद है, परंतु यहाँ स्थिति और अनुभाग कहाँ तक बनता है? हाँ प्रतिभाताई, हाँ हाँ, जब तक कषाय ने 10वें गुणस्थान के अंतिम समय तक। देखो स्थिति का जब बात आती, स्थिति बंध, तो श्रेणी में भी स्थिति का बंध घटते चला जाता है, परंतु अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त के बाद घटता है, अंतर्मूर्त उतना होगा फिर कट डाउन होगा, फिर अंतर्मूर्त फिर कट डाउन होगा, परंतु अनुभाग में ऐसा नहीं है। अनुभाग का बंध अभी यहाँ शुभ प्रकृति है, प्रति समय अनंत गुणा अनंत गुणा अनंत गुणा अविभाग प्रतिच्छेद में बढ़ जाएगा, बंध भी सत्ता में तो बढ़ ही रहा है, ख्याल में? तो उसका अंतिम एक समय लेना, वो भी क्षपक लेना, उपशमक नहीं लेना। तो क्षपक जो जीव है, क्षपक यानी क्षपक श्रेणी वाला, 10वें गुणस्थान का जो अंतिम समय में, क्योंकि बंद कर रहा है ना, अनुभाग का बंध 10वें तक होता है, 12वें में उसकी सत्ता है, परंतु बंध कहाँ तक है? अनुभाग का 10वें तक है। तो उस समय बांधने वाले के यानी कौन सा जीव लिया? क्षपक लेना। अब क्षपक कहने से उन्हें कंडीशन लगाई अन्यतर, क्योंकि देखो परिणामों की अपेक्षा 9वें गुणस्थान से सभी के परिणाम समान होते हैं, ये तो कंडीशन, 9वें एक एक समय का परिणाम सुनिश्चित है और उतना ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो उतना ही परिणाम होगा, तो अनुभाग भी उतना उतना ही बंधेंगे प्रति समय, यानी सभी जीवों को समान है। तो अन्यतर कहने से कोई स्त्रीवेदी होता, स्त्रीवेद के उदय से चढ़ता है, पहले स्त्रीवेदी था, अभी तो अपगत वेदी हुआ, परंतु वो किसी भी वेद वाला हो सकता है, तीनों वेद में से पुरुष तो द्रव्य से पुरुष होगा, परंतु भाव से तीनों वेद वाले में से कोई वेद वाला था, वो अवगाहना कुछ भी हो सकती है, आदिनाथ की जैसे 500 धनुष ऊंचे होगी, या कोई महावीर जी से 7 हाथ होगा, या छोटा भी और होगा, तो कहते हैं कि उसका कलर कोई भी हो सकता है, संस्थान कोई भी होगा, क्योंकि 6 संस्थानों के साथ अरिहंत अवस्था प्राप्त हो सकती है, तीर्थंकरों को समय चतुर्थ होता है, परंतु बाकी कुछ भी हो सकता है। तो उसकी अपेक्षा से उसमें भेद होने पर भी सबके भाव समान है, तो उत्कृष्ट अनुभाग बंध 10वें के अंतिम समय में होता है। अब ये बंध की अपेक्षा उत्कृष्ट बताया, सत्व की अपेक्षा उत्कृष्ट अरे नहीं, शपक सत्व की अपेक्षा वेदनीय का, वेदनीय का, हाँ नहीं नहीं वेदनीय का, चौदहवें के अंत तक, यानी उसने बांधा तो दसवें में, तो प्रश्न पूछा दसवें में उसने उत्कृष्ट अनुभाग बांधा तो दसवें में स्थिति कितनी बांधी थी, मिनिमम 12 मुहूर्त, वेदिनी के 12 मुहूर्त थी, नाम गोत्र की 8 मुहूर्त थी, तो कहते कि 12 मुहूर्त में तो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि जितना बांधा है उसकी स्थिति 12 मुहूर्त की बंधी है, तो उसके बाद कोई तो 13वें गुणस्थान में, तो कितने पूर्व कोटि में 8 वर्ष कम इतना, तो उसमें 13वें गुणस्थान में रहने का उत्कृष्ट काल है किसी का, करोड़ पूर्व की आयु वाला 8 वर्ष के बाद संयम धारण करता है, केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है अंतर्मुहूर्त में, तो वो 13वें गुणस्थान में इतने काल तक रहेगा, और उसने दसवें के अंत में कितनी स्थिति बंधी, 12 मुहूर्त, तो कब तक खलास हो जाएगी, और आप कह रहे हो कि 13वें में भी सत्व है, 13वें की बात क्या, 14वें में भी उसका सत्व है, ये कैसे पॉसिबल है, ये प्रश्न था, तो उसका उत्तर, ये सब हमारे विषय हो चुका है तो उसमें उत्तर है, जब वो 13वें गुणस्थान, सॉरी हम 10वें गुणस्थान में जब उसने बंध किया था, तो सत्ता में कितनी स्थिति पड़ी थी कर्मों की, पल्ले के असंख्यात विभाग, जो अघाती कर्म है आयु छोड़कर, उनकी स्थिति कितनी होती है वहां पर, पल्ले का असंख्यात विभाग, तो उनमें जो अनुभाग पड़ा था वो तो उत्कृष्ट नहीं था, दसवें के अंत समय में उत्कृष्ट था, पर ये बंध के साथ उत्कर्षण होता है, बंध के साथ उत्कर्षण होता है, स्थिति तो कम बंधी है, स्थिति में उत्कर्षण का सवाल ही नहीं है, पर अनुभाग मैक्सिमम बंधा है, तो सत्ता में जितने पल्ले के असंख्यात विभाग तक के जितने निषेक पड़े थे, उनमें से कुछ परमाणु उत्कृष्ट अनुभाग रूप से हो जाते हैं, और उसकी सत्ता अयोगी के अंतिम समय तक बनी रहती है, इसलिए बंध की अपेक्षा दसवें में उसने उत्कृष्ट बंध किया, पर बारहवें में, तेरहवें में, चौदहवें में उसका सत्व पाया जाता है, ये वेदिनी की बात बताई, नाम और गोत्र में भी ऐसा ही है, उसका जो यशस कीर्ति बन रही वहां पर दसवें में, और उच्च गोत्र बन रहा है उसमें भी यही कंडीशन लागू है, असाता के वहाँ है पड़े हैं, सारे के सारे साता रूप नहीं होते, किसी को असाता का उदय भी होता है, वो बात बताएंगे बाद में, जघन्य की बात चलेगी तभी वो उसकी चर्चा आएगी, वो कल उसकी चर्चा बहुत हुई थी, ये पूरे तीन चार लेक्चर का हम सर्वाणो जिसको कहेंगे, हाँ तात्पर्य बता रहे यहाँ पर, तो यहाँ ना 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 पल्ले के असंख्यात विभाग तक, क्योंकि श्रेणी में उसने सारे कांड घात किए थे ना स्थितियों के, स्थिति घटते घटते घटते, घाती तो अभी अंतर्मूर्त का रहा था, वो तो अभी द्वारवे में तो नष्ट होने वाला है, परंतु अघाती जो है आयु तो अपनी जितनी स्थिति लेकर आया उतने रहेंगे, परंतु बाकी तीन जो अघाती है उसकी स्थिति यहाँ पल्ले के असंख्यात विभाग तक रहती है, सत्ता में पड़ी है, उसका क्या होता है वो तो अपना यहाँ का विषय नहीं है, वो क्षपक श्रेणी का विषय था। अभी नाम गोत्र में भी यही है, दसवें के अंत में नाम में से यशस कीर्ति एक ही बन रही है, और उच्च गोत्र बन रहा है वहां पर, 8 मुहूर्त का बन रहा है, उसमें भी उत्कृष्ट अनुभाग बन रहा है वहां पर, यहां तक बात ख्याल में आई। अब आयु रह गई, आयु की बात पूछ रहे हैं, तो आयु में उत्कृष्ट अनुभाग किसके होता है, देखो आयु में क्या है, देवायु, तिर्यंचायु और मनुष्यायु तीन शुभ आयु है, और नरकायु अशुभ है। अब शुभ आयु का अनुभाग जैसे स्थिति अधिक बनती आयु में, आयु में इन्वर्टेड है, अन्य प्रकृति में क्या देखा, वेदनीय कैसी है, शुभ प्रकृति, साता वेदनीय शुभ प्रकृति है, तो उसकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी बनेगी, तो संकलेश में बनेगी, और जघन्य स्थिति कहाँ बंधेगी, तो दसवें के अंत में बंधेगी, ये तो हमने देखा। पर तीन आयु में उल्टा होता है, तीन आयु की उत्कृष्ट स्थिति जैसे देवायु 33 सागर की कब बंधेगी, जब परिणाम अधिक विशुद्ध है, तो जब वो शुभ प्रकृति है, अधिक विशुद्धि है, तो अनुभाग भी अधिक बांध रहा है। तो यहाँ पूछ रहे कि आयु में अनुभाग कब अधिक होता है, कौन से जीव को, तो उसमें से देवायु लेना है, क्योंकि ये तीन आयु में से देवायु उत्कृष्ट है, तो 33 सागर की आयु बांधने वाला जीव है, कौन सा वाला लेना, वो अप्रमत्त लेना, प्रमत्त भी बांधता है, अप्रमत्त भी बांध रहा है, प्रमत्त अप्रमत्त में वो तो बंधना चलता है, तो अप्रमत्त में विशुद्धि ज्यादा है, तो अप्रमत्त गुणस्थान वाला, वो भी साकार वाला, वो जागृत, वो सब कंडीशंस लगा ली उसमें, तो वो जीव बंध करेगा, उत्कृष्ट बंध करेगा। तो बंध की अपेक्षा आयु के उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता किसके होगी? बंध की अपेक्षा वो सातवें गुणस्थान वाला, पर सत्ता की अपेक्षा वो सातवां वाला छठे में आएगा तो भी उसकी सत्ता बनी रहेगी। और वो जो उत्कृष्ट बंधी है, उत्कृष्ट अनुभाग वाली 33 सागर की, वो मरकर अनुत्तरों में चला जाएगा। अनुत्तर समझते हैं? लास्ट के सर्वार सिद्धि और उसके बाजू के चार विमान। और ये 33 सागर की मैक्सिमम ली है वहां पर, तो उतना उत्कृष्ट अनुभाग लेकर वहां जाएगा तो अनुत्तर वासियों की भी वो उसकी सत्ता रहेगी, क्योंकि देवायु बांध के गया है वहां पर। अभी उसका अनुभाग घटने तो भी देखो, मरने से कोई सवाल नहीं है। देखो आयु बांध के रखी है, आयु का अनुभाग कैसे कम हो सकता है? कम भी हो सकता है। देखो उन्होंने ये बात बताई, ऐसे जिसको उत्कृष्ट अनुभाग पड़ा है वो उत्कृष्ट अनुभाग के साथ नीचे के गुणस्थानों में नहीं आता। अब वो जीव क्षपक उपशम श्रेणी भी चढ़ के उतरा है, वो पांचवे या चौथे गुणस्थान में नहीं आएगा। हमने ये देखा था, उपशम श्रेणी चढ़ के उतरने वाला पांचवे में चौथे में भी जा सकता है। अरे आयु का नहीं बंद किया हो तो हो सकता है परिणाम के कारण मिथ्यात्व में भी जावे। परंतु यहाँ किसकी बात ली है? उन्हें उत्कृष्ट अनुभाग के सहित वाला। तो कहते क्या वो नीचे के गुणस्थानों में जा सकता है? जा सकता है, परंतु वो अनुभाग घटा कर जा सकता है। अनुभाग भी घटेगा और स्थिति भी घटेगी। उसके लिए उन्होंने द्वीपायन मुनिराज की उसका दृष्टांत दिया। उन्होंने भावलिंगी संत थे, 33 सागर की आयु बांधी थी उन्होंने, उसको कहते बाद में उन्होंने उसका अपवर्तन घात किया। इन्हें क्या किया? स्थिति भी घटी और अनुभाग भी घटा। स्थिति कैसे घटी? 10,000 वर्ष की हो गई, अनुभाग भी घटा। तो कहते कि उत्कृष्ट अनुभाग के साथ मिथ्या तो में नहीं आए, अनुभाग घटा, स्थिति भी घटी, मिथ्या तो में आए। क्योंकि उन्होंने ये, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग और उत्कृष्ट स्थिति लेकर मिथ्या तो में नहीं आ सकते। तो पहले ये नियम कल बताई उन्होंने, नियम बताया। अरे पांचवे में भी नहीं आते तो वो मिथ्यात्व की सवाल ही नहीं है। तो पहले उन्होंने वो अशुभ तेजस निकला, जो कुछ है वो कार्य हुआ, फिर वो स्थिति भी घटाई, अनुभाग भी घटा देवायु का, 10,000 वर्ष की हो गई, वो मिथ्यात्व में चले गए और मरकर वो भवनवासी में अग्नि कुमार होकर वहां जन्मे। कल बात आई थी ये सब, यानी तब। परंतु उनका अनुभाग तो अनुत्कृष्ट हुआ ना नीचे गुण, तो उत्कृष्ट अनुभाग का सत्व कहाँ है? सातवें में बांधने वाले के। और वो जीव जब तक अभी मरण के पहले छठे सातवें में रहेगा तो उसका उत्कृष्ट अनुभाग रहेगा, और वो मरकर वो देव में गया तो वहां पर भी उत्कृष्ट अनुभाग के साथ वहां जन्मा है वो, वहां अनुभाग घटने का कोई कारण नहीं है। यहां तक बात हुई थी, तो ये आयु की बात हुई, ये सभी उत्कृष्टों की बात हो गई। अब जघन्य की बात करें। अब जघन्य में हमको उल्टा सोचना है ना। अब जघन्य अनुभाग की बात करते हैं। देखो जघन्य अनुभाग में हम ज्ञानावरण की बात पहले लेके, ये ज्ञानावरण प्रकृति कैसी प्रकृति है? अशुभ प्रकृति है। उसका उत्कृष्ट अनुभाग तो मिथ्या दृष्टि बांध रहा था, उसका जघन्य अनुभाग कौन बांधेगा? हाँ देखो देखो निकालो अभी। बाईस पेज पर थे ना। हाँ आपका प्रश्न जो है, किसी ने उत्कृष्ट आयु बांधी है और ऐसे संकलेश नहीं हुए कि पांचवे या चौथे गुणस्थान में जाए, मिथ्या दृष्टि में जाए, तो उसका अनुभाग इतना ही बना रहेगा। हाँ बिल्कुल। हाँ देवों में भी बताए ना, अभी किसी ने देखो करोड़ पूर्व की आयु है मुनिराज की, और वन थर्ड पूर्व कोटि पहले मरण के पहले उस देवायु बांधी, तो उसका अनुभाग वन थर्ड पूर्व कोटि तक रहेगा, तभी जाके अनुदिश में भी वही अनुभाग रहे ना। समझ में आती है ना बात? हाँ हरेक जीव के परिणाम बिगड़ गए ऐसी कोई बात नहीं है। अनुभाग घटाता है तो स्थिति भी घटेगी, वो ऊपर जाएगा ही नहीं। जघन्य या अनुत्कृष्ट अनुभाग लेकर ऊपर जन्म नहीं लेगा वो। ये अनुभाग की चर्चा अधिक नहीं आती है शास्त्र में, इसलिए हमको ये प्रश्न पड़ता है ना कि अनुभाग क्या काम करता होगा। हाँ देखो अभी हम पेज नंबर 22 पर हमने पढ़ा था स्वामित्व से 21 नंबर का सूत्र, जघन्य ज्ञानावरणी की वेदना भाव की अपेक्षा जघन्य किसके होती है, यानी दूसरी अपनी भाषा में ज्ञानावरण का जघन्य अनुभाग किसके होता है। तो कहते वहां पर भी बताया कि क्षपक जो अंतिम समयवर्ती छद्मस्थ, अब यहां बंध की अपेक्षा नहीं ली बात है, जघन्य बंध कहां होगा, दसवें के अंत में, जैसे वेदनीय में तो वहां लिया बंध, उसका उत्कृष्ट बंध लिया था क्योंकि साता वेदनीय शुभ प्रकृति है, उसका उत्कृष्ट बंध वहां हुआ था दसवें में, और ज्ञानावरण अशुभ प्रकृति है, उसका जघन्य अनुभाग बंध वहां पर होगा। तो वहां पर जघन्य अनुभाग बंध हुआ है उसका अशुभ प्रकृति का, परंतु बंध की अपेक्षा जघन्य नहीं लिया। इन जनरल जघन्य कब होगा, तो क्योंकि दसवें के अंत में जो अनुभाग बंधा है और वहां जो सत्ता में पड़ा है वो प्रति समय अनंत गुणा घटता होता है, बारहवें के एक एक समय में अनंत गुणा अनंत गुणा अनंत गुणा घटकर अंतर्मूर्त के जितने समय है असंख्यात होते हैं, तो असंख्यात बार अनंत गुणा घटा, तो जाके बारहवें के अंत में जहां उसका सत्ता सत्व का अंतिम समय है, क्योंकि वो नेक्स्ट समय वो नहीं रहेगा, तो वहां पर जाके उसका जघन्य अनुभाग पाया जाता है। तो क्षपक वीतराग छद्मस्थ बताए ना, अंतिम समयवर्ती छद्मस्थ के वो अनुभाग उसका जघन्य होता है, और जो जघन्य ने वो अजघन्य होता है। अब जैसे ये तीन घाती एक साथ जाते हैं बारहवें में, कौन से, ज्ञानावरण दर्शन और अंतराय, तीनों के बारे में उसका जघन्य अनुभाग सत्व की अपेक्षा यहीं पर पाया जाएगा। यहां तक बात अपनी हो गई। अब वेदनीय के बारे में पूछ रहे, अभी वेदनीय के बारे में कुछ ट्रिक है जो हमें समझना है। अभी वेदनीय का जघन्य, पहले हमने वेदनीय का उत्कृष्ट देखा था, दसवें में बंद होता है और वही आगे उतना ही सत्व, उसमें कुछ बढ़ोतरी नहीं होगी। आप कहेंगे बाद में तो इतना और परिणाम विशुद्ध हुए तो बाद में और बढ़ना चाहिए था अनुभाग, तो बढ़ने के लिए बंद की कंडीशन होती है, ये हमेशा याद रखना। स्थिति बढ़ो या अनुभाग बढ़ो, सत्ता में पड़े हुए कर्म अपने आप नहीं बढ़ते हैं, उसमें नए बंध की आवश्यकता होती है, कंडीशन है। संक्रमण में भी ऐसी कंडीशन होती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अभी वेदनीय की वेदना जघन्य किसके होती है, अनुभाग जघन्य कब होगा। तो हम तो सोचते हैं अरे असाता का सोचना कि साता का सोचना, पर वेदनीय कहने से सत्ता में तो दोनों पड़े हैं, क्योंकि हर अंतर्मुहूर्त में वेदनीय दोनों बनते ही रहते हैं हर जीव को, यानी अनादि से दोनों की सत्ता पड़ी है। तो जघन्य कब हम कंसीडर करेंगे, तो जघन्य कंसीडर करना है तो असाता का जघन्य लेना कि साता का जघन्य लेना। तो साता का जघन्य कब होगा, संक्लेश में, असाता का जघन्य कब होगा, विशुद्धि में। तो असाता कब तक होती है, बनती तो असाता का बंध तो छठे तक है, असाता का सत्व कहां तक है, चौदहवें के अंतिम समय तक, उदय भी है वहां पर, किसी के साता का उदय होता है किसी के असाता है। अब दूसरी बात, आप कहेंगे चौदहवें में किसी को असाता का उदय है, सत्ता तो दोनों की है, साता की भी और असाता की भी, यानी जो अनुदय रूप चौदहवें में जिसका असाता का उदय है उसके साता वेदनीय सत्ता में पड़ी रहती है अनुदय रूप से, और उसका क्षय उपांत समय में होता है, चौदहवें के उपांत समय में, लास्ट बट वन, जैसे हमने बहुत बार सुना है तेरहवें गुणस्थान वाले की वो 85 प्रकृति होती है, उसमें 72 प्रकृतियां उपांत समय में नष्ट होती है और अंतिम समय में 13 चली जाती है। चौदहवें गुणस्थान के तेरहवें वाले को तो 85 थी, चौदहवें में आया तब भी 85 है, सत्ता में उदय में इतनी नहीं थी, उदय में तो कुछ 12 ही हो सकती है उसमें से, और 13 प्रकृतियां अंतिम समय, क्योंकि मनुष्य गत्यानुपूर्वी भी है ना, वो उदय में नहीं आती है। तो ये है, तो देखो दोनों ही उसके वेदनीय सत्ता में थे। अब ऐसा जीव लेना है कि चौदहवें में उसका असाता का उदय चल रहा है, परंतु सत्ता में साता है तो उत्कृष्ट कहलाएगा, वेदनीय का वहां जघन्य नहीं कहेंगे, उत्कृष्ट कहेंगे, पर उपांत समय में जहां साता वेदनीय नष्ट हो गई, सत्ता में से चली गई क्योंकि असाता का उदय है, तो अभी असाता अकेली रहेगी, और असाता अकेली रही तो उसका अनुभाग कैसा है, मिनिमम है और अकेली है, तो पूरे वेदनीय का मिनिमम कब कहेंगे? असाता वेदनीय के उदय सहित वाला जीव जो चौदहवें के अंतिम समय में है उसको कहेंगे। ख्याल में आई बात? तो देखो ये हमने देखा था पेज नंबर 23 पर, 26 नंबर का सूत्र देखा था हमने, असाता वेदनीय का वेदन करने वाले, यानी वेदन करने वाले ने उसका उदय वाले, ये कर्मों का वेदक कहा जाता है, यानी उसका उदय वाला समझना। तो असाता वेदनीय का जिसको उदय है ऐसा अंतिम समयवर्ती भवसिद्धिक, यानी अभी संसार का वो अंतिम समय है, यानी चौदवा गुणस्थान का अंतिम समय। अन्यतर क्षपक, अन्यतर इसलिए लिया कि उसके कोई भी अवगाहना हो सकती है, अन्य कुछ भी हो सकता है, इसलिए अन्यतर कहा। वेदनीय की वेदना, उसके वेदनीय के वेदना यानी वेदनीय कर्म का अनुभाग भाव की अपेक्षा जघन्य होती है, यानी उसके वेदनीय का अनुभाग मिनिमम पाया जाएगा। वेदनीय कहने से वहां असाता की अपेक्षा लगाई और वो चौदहवें गुणस्थान का अंतिम समय लिया वहां जहां असाता का उदय है। अब 24 पेज पर देखो, ये जो पहले शंका पूछ रही थी कि द्वितीय समयवर्ती द्विचरम समयवर्ती को क्यों नहीं लिया, उपांत समय में क्यों नहीं लिया, लास्ट बट वन समय में क्यों नहीं लिया, क्योंकि वहां दोनों ही वेदनीय उपलब्ध थे और वेदनीय इन जनरल बात करेंगे तो वेदनीय का तो उत्कृष्ट अनुभाग था वहां पर, तो हम उसको जघन्य नहीं कह सकते। जब वो साता चला गया, अकेला असाता रहा और उसका जघन्य रह गया, तब हम कहेंगे वेदनीय का सत्व जघन्य हो गया, इसलिए उपांत समय वाले को नहीं लिया। ये चर्चा अपनी कल हुई थी। अब दूसरी शंका पूछते, यहां से अपना आज का विषय शुरू होता है। अब तक हमने क्या रिविजन देखी, ऐसा क्यों क्या पूछते हैं? तो नए सुनने वाले हैं ना, आज से कोई सुनेंगे नए तो क्या चल रहा है, थोड़ा अंदाजा तो आवे और हमें जानने लायक कितनी कितनी बातें हैं आगम में। देखो ये शंका पूछ रहे हैं, असाता वेदनीय का वेदन करने वाले के यह विशेषण किस लिए किया जा रहा है? देखो असाता का वेदन, वेदन यानी उसका उदय, कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक होता है? उदय उदय पहले से चौदहवें तक। हाँ, हर अंतर मुहूर्त में पलटता रहता है, यानी हमारा भी साता का असाता का साता का असाता उदय और बंध भी दोनों का उलट पुलट चलता रहता है। असाता का उदय में असाता भी बन सकते हैं, साता भी बन, उसकी चर्चा यहाँ नहीं अभी, परंतु उसका उदय तो सर्वत्र है। तो कहते हैं क्योंकि लोगों को यही प्रश्न है, अरे तेरहवें गुणस्थान वाले को असाता का कहाँ उदय है, साता का उदय है। असाता का अनुभाग मैक्सिमम पड़ा है और असाता अत्यंत हीन है और उसका उदय तो कुछ काम ही नहीं करता है, क्यों? मोहनीय है ही नहीं है। मोहनीय है तो हम किसी का लक्ष्य करके स्वयं सुख दुख रूप परिणमते है, उनको एक जैसा ही, उनके कुछ है ही नहीं है उसका, तो उनके लिए क्या, वो तो हमारे लिए भी वो परमाणु का ढेर है, हम अपनी कल्पना से ही किसी व... देखो ये पंखा घूम रहा है, अब गर्मी के दिन है, मान लेते ऐसे भी हमने लगा लिया, तो वो साता का उदय होगा क्या असाता का, बोलो मनीषा बेन। एसी ऑन है, पंखा ऑन है, हा? तो ये पंखा घूम रहा है वो साता के उदय से घूम रहा है क्या असाता के? वो किसी से, वो पुद्गल का जो परिणमन है उसमें काल द्रव्य निमित्त और कोई नहीं है, परंतु हम उसका लक्ष्य करके सुख मानते हैं ये मोहनी के कारण, तो हमारे लिए साता है। अभी पंखा भी घूम रहा है, ऐसे भी चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, नाश्ता बिस्ता करके लड्डू खा के बैठे हैं, इतने में किसी का फोन आता है, कोई दुखद समाचार मिलता है, तो वो साता कहाँ चला गया आपका? हमने किसी अन्य चीज का लक्ष्य किया और हम दुख रूप परिणमित हुए तो हम कहेंगे वो असाता का उदय है। यानी संयोग कोई साता असाता नहीं, वो तो कहने की पद्धति है संयोगों को। हम अभी संयोग सारे वैसे के वैसे है, हम किसी एक संयोग को लक्ष्य करके साता रूप हो रहे, उतने में किसी अन्य का विचार, अभी वो संयोग है भी नहीं है, विचार करते हैं ऐसा होगा तो, कल्पना करते और फिर हम असाता रूप परिणमित होते हैं, यानी उसके उदय रूप परिणमित होते हैं। तो ये जीव की कल्पना, उसका मान्यता, उसके राग द्वेष उसमें कारण होते हैं। अब यहाँ हम आगे देखते, देखो शंकाकार पूछते हैं, असाता वेदनीय का वेदन करने वाले के यह विशेषण किस लिए किया जा रहा है? समाधान नहीं, क्योंकि जो साता वेदियों का वेदन कर रहा है, देखो चौदहवें गुण स्थान में किसी जीव को साता का उदय होता है, किसी को असाता का होता है, कोई नियम नहीं साता असाता का। हाँ तो कहते देखो आपका प्रश्न है, जिसको उपसर्ग होता है उसको असाता मानना चाहिए। उपसर्ग कहाँ तक है, कौन से गुणस्थान तक? केवल ज्ञानी को तो उपसर्ग होता नहीं है, समझ में आई बात? वो कहाँ तक होगा, क्योंकि जो केवल ज्ञान के महात्म्य से उपसर्ग केवली भी, वो तो उसमें मिट जाते हैं। उपसर्ग पहले था, बाद में केवली हुए, तो इंद्रादि आकर पूजा करते, बहुत सारी बातें होती है उसमें, उस उपसर्ग नहीं रहता, वो केवल ज्ञानी का महात्म्य है। दे बारहवें तक कहेंगे ना, दसवें बारहवें उसके आगे नहीं है, और वो काल कितना इतना छोटा अंतर्मूर्त है। हमें लगता है कि वो असाता है कि साता है, उनका तो ज्ञान का ये भी नहीं हो रहा है वहां पर, तो उनके वो तो अपने स्वरूप में मग्न है, अतिन्द्रिय आनंद का वेदन कर रहे हैं। तो उनको समझाने के लिए हम बाहर से करते हैं, जैसे होते थे पार्श्वनाथ मुनिराज, तो ओले शोले पत्थर पानी गिरे तो अरे 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 अरे, और भक्तों को भी भाव आया, किसको? धर्मेंद्र को। पद्मावती तो स्त्री थी, दूर रहेगी वो, तो थोड़े ही जाके वो मुनिराज को टच करेगी वहां पर, वो धर्मेंद्र ने सारा कुछ किया, क्रेडिट पद्मावती को आ गया है ना। हाँ, धर्मेंद्र ने छत्र बनाया, ऐसा कुछ आता है तो ये तो अरे ठीक है ठीक है, जो कुछ यथा योग्य होगा कि नहीं। हाँ हाँ, ये तो नमस्कार भी साथ हाथ दूर से करते हैं स्त्री तो। वो भक्तिवश दोनों ही, धर्मेंद्र परमावती दोनों, वो तो कहते हैं वो भी भक्त है, जैसे हम भक्त है भगवान के, वो भी भक्त है। हाँ, तो देखो वो कौन थे, जो बालक अवस्था में प्रत्येक तीर्थंकर का जन्माभिषेक तो होता है, तो वो मेरु पर ले जाते हैं और 1008 कलशों से अभिषेक कराते हैं। वो कलश कितना बड़ा होता मालूम है मनीषा बेन? अरे आठ योजन के होते हैं वो कलश, तो उसमें कितना पानी भरते होंगे, वो तो क्षीर समुद्र का लाते ना, पांचवें नंबर का समुद्र, वहां से लाते हैं, और इतने कलश भर भर के सारे देव उसके ऊपर, ये छोटा बालक, एक दिन का बालक, अभी न्यूबॉर्न बेबी, उसके ऊपर इतना डाल रहे, उसको कुछ नहीं होता है, ये वज्रवृषभ नारायण सहनन वाले होते हैं, और वो मुनिराजों को इतने से, वो तो ओले शोले पत्थर, उससे क्या होने वाला है, कुछ नहीं होता है। अरे वो हनुमान के जीव की भी बात आती, वो तो विमान से, विमान ही नहीं, वो स्वर्ग का उनका जो देवों का विमान होता है, उसमें से गिर गया, नीचे गिर गया, नीचे गिर गया तो मां रोने लगी वो अंजना। तो कहते वो जहां गिरा तो शिलाएं ही भग्न हो गई, वो बालक को कुछ नहीं हुआ। तो कहते ये तो कहने की पद्धति है, उसके असाता का उदय है या कुछ है, तो भक्तों को तो वो संयोगों को देखते हैं, जो रागी है तो उसमें तो राग आने वाला है, वो रागी है इसलिए वो राग से परिणमित हो रहा है। अब वो जो कुछ द्वेष कर रहा था कमट का जीव, वो द्वेष रूप परिणमित हो रहा था, और वो मुनिराज तो अपने में स्थिर थे, अपने में राग द्वेष रहित वीतरागता का आनंद का अनुभव कर रहे थे, ख्याल में आते हैं बात? तो हमें तो महात्मा किसका आता है, वो मुनिराज का आता है कि उसको तो पद्मावती ने क्या किया, धर्मेंद्र ने क्या किया, तो हम कैसे भोले जीव उनकी पूजा करने लग जाते हैं। हाँ ऐसा ही ऐसा होता है ना, अरे भगवान का रक्षण किया हमारा भी करेंगे थोड़ा। क्या कह रहे हाँ, आपका ये प्रश्न है और हाँ बहुत बड़ा प्रश्न है आपका। आप मनीषा बहन का प्रश्न ऐसा है कि सबसे बड़ा सरदार है नव, वो तो दसवें में ही चला गया, बाकी तीन घाती है वो भी सरदार उसके है, घाती घाती चले गए वो भी बारहवें में चले गए, और ये लल्लू पंजू कोई जो और जब वो चले गए तो छद्मस्त था, अनंत वीर्य भी नहीं था, बरोबर है? अभी अनंत वीर्य भी हो गए, सर्वज्ञ भी हो गए, आप बोलेंगे कुछ? तो उनके तो वो क्या, वो जल्दी नष्ट करने चाहिए थे, तो क्यों नहीं नष्ट किए, प्रश्न यही है ना। तो कर्म बलवान है कि नहीं? मूल में मूल जीव कर्म का कुछ नहीं करता है, वो तो कहने की पद्धति है। जो नीच गोत्र कहीं नहीं चला गया, सत्ता में है, कुछ नहीं। अरे जाना चाहिए, हम सोचते हैं क्योंकि हमने उसको बुरा माना। नहीं नहीं समझे आप? नहीं नहीं नहीं, ये हमारे, अरे ऐसा नहीं है, बुरा नहीं है वो। अरे हमारा मिथ्या तो बुरा है, मिथ्या तो कर्म क्या है, वो तो जड़ है, धूल है, वो कुछ नहीं करता है, जीव स्वयं उसके वश होकर करता है। आपका प्रश्न यही है कि असाता चाहे जाना चाहिए था, मुझ साता जाना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं कहा? वो भी आघाती है ना, उसको क्यों रखना चाहते? ये अभिप्राय अभिप्राय में पड़ा है। आप बोलेंगे कुछ?
देखो पहले में कर्म जो है उसको ज्ञान नहीं है, वो कभी जानेगा कभी नहीं जानेगा, उसको कुछ अक्कल ही नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जीव कर्मों को कुछ नहीं कर सकता है, ये तो सहज जीवों के ऐसे अंतरंग में लीनता के परिणाम होना और वहाँ कर्मों का नष्ट होना। तो कहते कि जीवों ने घाती कर्मों को नाश किया, कहेंगे लेकिन कुछ नहीं करते। ऐसा कोई प्रश्न आए तो पहले वो गला पकड़ने का, किसका? अपना
अपना,
कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये अगर हमारे दिमाग में बात सतत चालू है तो ये कर्म क्यों नहीं गया, उसको पहले हटाना था ना, वो क्या लल्लू पंजू रह गया। ऐसा ही होता है, युद्ध में भी सेनापति को गिराया, वजीर को गिराया, तो बाकी सब इतर तितर भाग जाते हैं, उनको भगाना नहीं पड़ता है। ऐसा समझना कि उनका टाइम आ गया तो वो जाएंगे, जीव कुछ नहीं करेगा। जीव तो स्वरूप में एकाग्रता है उसकी,
यानी उसमें भी प्रश्न है। तो ऐसा तो क्यों नहीं किया?
नहीं,
साता के बारे में प्रश्न नहीं आया,
ये बराबर है, ना? है आपका। हाँ, इसमें जो खोटे कर्म है वो बुरे है,
वो बुरे है, वो जल्दी जावे तो अच्छा, ऐसा लगता है,
ऐसी मान्यता है। अरे जो कर्म जाएंगे वो अपने स्वयं के कारण से जब जाना है तब जाएंगे।
तो आयु क्यों नहीं गया पहले, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है ना? हमारे जाने दो, सब सब कर्म रहने दो, हमारे आयु गए तो चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? अरे अच्छा है ना, मनुष्य भाव कम, अरे मोक्ष के पहले का एक भाव कम हो जाएगा, उसमें बुरा क्या है? परंतु अभी आयु जाने का समय आया, मान लेते कि कोई अभी कल्पना भी हुई तो कितना संकलेश हो रहा है, क्यों नहीं? आयु कर्म तो चाहिए, फिर भी इधर जाएंगे उधर जाएंगे, सब डॉक्टर के पास चले जाएंगे, क्यों? क्योंकि आयु कोई तो बढ़ा देगा, अरे कोई बढ़ाने वाला, एक समय की भी बढ़ोतरी नहीं होने वाली। आयु तो बांध कर आए हैं हम निमित्त रूप से, हमारी योग्यता जब तक है यहाँ पर, वो आयु कर्म का भी वो अपने कारण उसका भी उदय होगा। देखो सब में एक ही कंडीशन
है, जैसे डॉक्टर के पास जाए कि जितने डॉक्टर के पास जाए, तुम्हारा शरीर का परिणमन जैसा होना है वैसा ही होगा, कोई डॉक्टर आपको सुधार नहीं पाएगा।
नहीं तो डॉक्टर ही केवल जिंदा रहते, बाकी सब मर जाते हैं।
नहीं नहीं, ये अंदर से कन्फर्मेशन अपने को होना चाहिए। एक बात बताता हूँ, जब हमने निर्णय लिया था कि अभी से हम कमाई धमाई कुछ नहीं करेंगे, तब डॉक्टर विसरिया जो है सरलाबेन, उन्होंने कहा अरे आप बीमार पड़ोगे, 2-5 लाख का खर्चा आएगा, तब क्या करोगे, कहाँ से पैसा लाओगे, ऐसा एब्रप्टली आप ये किया। तो उज्ज्वला ने उत्तर दिया, हम उस समय संलेखना लेंगे। अभी इससे बढ़िया उत्तर क्या चाहिए?
अरे हमें तो लगता है कोई बड़ा हॉस्पिटल होगा, हम 3-4 लाख 5 लाख खर्चा करेंगे तो बचेंगे। अच्छा अवसर है ना, अभी मृत्यु नजदीक आया, समझ में आया, तो हॉस्पिटल की क्या जरूरत है? हमें तो अपने आत्मा में स्थिरता की जरूरत है उस समय। तो हमारे भले वो तो बाकी अपने में कोई रिलेटिव ले जावे, उसमें कुछ बात नहीं है। ये तो देखो उसकी आयु होगी तो उसके निमित्त भी ऐसे मिल जाएंगे, हमें क्या लेना है आयु हो या ना हो, हम तो है ना वहां पर। ये आयु नहीं रही तो दूसरा तो अभी हमारा थोड़ा ही नाश होने वाला है, हम तो कायम है। देखो इसमें तो कितनी निराकुलता हो जाती है, कोई चिंता का काम ही नहीं ना उसमें। हमको कौन, अभी हम दोनों ही रह गए, हमारे एक मित्र है, उसके तो 2 लड़के और 1 लड़की है, और क्या है कोई विदेश में पढ़ने को चला गया, दूसरा भी गया, फिर वो लड़की वो भी चली गई, और सब वहां पर सेटल है भी। तो फिर हमारी वो फ्रेंड रोने लगी, अभी हम दोनों ही है, अभी और बूढ़े हो जाएंगे, तो हमने से कोई तो एक चला जाएगा, तो अभी हम अकेले रह जाएंगे, तो रोने लगी, बहुत रोने लगी। मतलब अभी क्यों रोती हो, अभी तो अच्छे है दोनों, तो थोड़े आंसू बाद में रोने के लिए बाकी रखो ना, अभी क्यों रोती है पूरा का पूरा, अभी तो दोनों अच्छे है, दोनों अच्छे मौज मजा करो ना, अभी बच्चे नहीं, उनके बच्चे नहीं, कोई कंडीशन कुछ है ही नहीं है, तो आराम से जीना, कुछ नहीं है, कुछ करना नहीं है, कोई वो स्वाध्याय करने वाले नहीं थे, अन्य मति थी, पर हमने हमने बोला तो अच्छी बात है ना, अभी मौज मजा आपकी भाषा में मौज मजा कर लो। परंतु ये जीव क्या आगे की सोचता है और कल्पना कर करके रोने लगता है। और जिनागम जो है तत्व ज्ञान, एक बार आप सही उसका निर्णय कर लो तो इतना। हाँ, आपका प्रश्न है, हम दूसरे भाव में पढ़ने को नहीं मिला, अरे पर हमने जो अंतरंगे अपनी रुचि बढ़ाई है, सहज रूप से वैसे निमित्त मिलेंगे। अरे पढ़ने को नहीं मिलेगा तो हो जाएगा, तीर्थंकरों के समोशरण में जाके साक्षात वाणी सुनोगे, उसकी चिंता मत करना, और उसके लिए महाविदेह में जन्मने के भी सपने मत देखो। क्योंकि यहाँ मनुष्य से कर्म भूमि से मन आप देखो संयोगों देखो, अपनी योग्यता से प्रत्येक कार्य होता है, और हम अपने स्वभाव की इतनी महिमा इतनी रुचि बढ़ाओ कि किसी भी पर्याय में चले क्यों नहीं जाए। अभी वो तो श्रेणिक राजा के बहुत देरी से जागृत हुआ है ना, और नरक में गया, फिर भी अभी सबसे पहले जाके मोक्ष चला जाएगा तीर्थंकर के। बिल्कुल, अभी ऐसे काल में, पंचम काल में जन्मे, ऐसे निकृष्ट काल में जन्मे, फिर भी ये उत्कृष्ट उपदेश हमें मिल रहा है कि नहीं आज की तारीख में। अब हमारे लिए गुरुदेव निमित्त बने, और कोई निमित्त बने, पुस्तकें निमित्त बनी। अरे पहले के टोडलमल जी साहब को तो धवला देखने को, दूर से देखने को मिलता था केवल मूड बिद्री में, वो लेने उन्होंने तो स्वयं नहीं देखा, जो लेने गए थे वो तो रास्ते में एक मर गया, और फिर दो लौट के आए, खाली वो दर्शन मात्र अवेलेबल थे, पढ़ने को भी नहीं। ये हमारा कितना सौभाग्य है कि हर एक के हाथ में आज ये पुस्तकें हैं, और हमारा ये तो दूसरी बार वाचन चल रहा है, धवला जय धवला महाधवला सब हो गए, यानी हम कितने नसीबदार है ऐसे निकृष्ट काल में। ये योग्यता हमारी है तो कहीं पर भी निमित्तों की चिंता ही नहीं करना है। अब वो सिंह पर्याय वाले को वो आकाश से चारण रिद्धिधारी वो तो उतर के आ गए, हमें तो चिंता लगती कौन निमित्त मिलेगा, हमारा क्या होगा, अरे हम स्वयं है ना।
सिर्फ पढ़ने को मिलना ये हमारा सौभाग्य बोल के उधर ही रुकने का नहीं है, इसके आगे जाके अपने स्वरूप में लीनता करना है, वो सब भूल जाते। अभी मिल गया, हाँ अच्छा अच्छा, चलो दो नहीं चार कॉपी तुम लेके जाओ, तुम लेके जाओ,
वही है। और ये पढ़ने का भी कल नियमसार में बहुत बहुत बात आई थी अच्छी, वहाँ प्रतिक्रमण का विषय था, तो व्यवहार प्रतिक्रमण जो है, जो सूत्र में जिन सूत्रों में बताया है मुनियों ने वो लिखे है, तो ये व्यवहार प्रतिक्रमण या व्यवहार जो क्रियाकांड है उसकी सफलता किस में है, तो कहते उसका त्याग करके अपने अंतरंग में स्थिर होने में उसकी सफलता है। हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं हम पढ़ने में सफलता है, पढ़ने में नहीं है, ये तो पढ़ रहे हम, ये पढ़कर, क्योंकि ये चारों ही अनुयोगों का तात्पर्य क्या है, वीतरागता, ये पढ़कर उसका अभ्यास करके हम बारंबार अपने स्वरूप का चिंतन करके वो वीतरागता प्राप्त करेंगे बढ़ाएंगे, तो ये पढ़ने का सफलता है। केवल पढ़ने को मिलना ये सफलता नहीं है, और हमने वो कोशिश की, तत्व विचार किया, तो जो हमने अभी वितरकता प्राप्त किया, जिसको नहीं भी हुई और तत्व ज्ञान की गहरी रुचि हुई है, तो उसके उस रुचि पूर्वक ही आगे का मार्ग प्रशस्त होगा, उसकी चिंता की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो ऐसे आगे क्या होगा, आगे कुछ नहीं, हम तो इसी में लगे रहे। हाँ आगे बढ़ना है थोड़ा। अभी तो हमने एक ही वाक्य पढ़ा था, शंका का समाधान, पहले में पहले पूछा गया था असाता वेदन्य का वेदन करने वाले के विशेषण क्यों दिया है, तो कहते क्योंकि जो साता वेदन्य का वेदन कर रहा है, यानी जिसके साता का उदय चल रहा है, और जिसने द्विचरम समय में, द्विचरम मैंने 14वें गुणस्थान का लास्ट बट वन, उपांत समय, आखिर से दूसरा समय, उदया भाव होने से, उदया भाव यानी उदय का अभाव, उदय भाव ने कहा उदया भाव, ये रूल है, वहां जो अनुदय रूप प्रकृतियां है अनुदेव रूप प्रकृतियां उपांत समय में नष्ट होती हैं। तो 72 प्रकृतियों का जो वहां नष्ट हो जाती है, घात हो जाता है, 85 में से वो सारे अनुदय रूप प्रकृतियां हैं। तो कहते हैं कि और उसमें क्या, अभी हमने देखा साता वेदनीय का उदय हो तो असाता क्या हो गई, अनुदय रूप, जिसको हम उदयाभाव कह रहे, उदय का अभाव। तो उदयाभाव होने से असाता वेदनीय का नाश कर दिया है, उस साता वेदनीय के उत्कृष्ट अनुभाग को धारण करने वाले, अभी उसके अकेले साता वेदनीय ही है और उसका अनुभाग कैसे उत्कृष्ट है, क्योंकि उसने दसवें में जब बंध हुआ था उत्कृष्ट, तब कुछ परमाणु उत्कृष्ट रूप से परिणमित हुए थे, वो उत्कृष्ट रूप जो हुए है वो घटने का कोई कारण ही नहीं रहा, क्योंकि 13वें में 14वें में विशुद्धि उतनी की उतनी चल रही पूर्ण वितराग तक, तो घटने का कोई कारण ही नहीं रहा था वहां पर। तो कहते साता वेदनीय के उत्कृष्ट अनुभाग को धारण करने वाले अंतिम समयवर्ती भवसिद्धि के, यानी 14वें गुणस्थान के अंतिम समयवर्ती जीव के वेदनीय का जघन्य स्वामित्व मानने में विरोध आता है। वेदनीय यानी वेदनीय इन जनरल, अभी जिसको साता का उदय है उसका तो उत्कृष्ट अनुभाग है, और हमें जघन्य की बात हमको देखनी है कि जघन्य किसके होता है। हाँ, तो जिसका असाता का उदय है उसने साता का नाश कर दिया रूपांत समय में, अकेली असाता रह गई है, तो अंतिम समय में वो जघन्य अनुभाग वाली होती है। परंतु असाता का वेदन करने वाले के वेदनीय का अनुभाग जघन्य होता है, कहाँ, वो अंतिम समय में, वो है। हाँ, क्योंकि पूरे वेदनीय का कौन सा, देखो साता हो या असाता हो, वेदनीय का अनुभाग किसको कहेंगे, जिसका कोई उत्कृष्ट है उसको वेदनीय का कहेंगे। अभी उसका उत्कृष्ट पड़ा है तो हम वेदनीय का जघन्य नहीं कह सकते, ये बात है। परंतु जो असाता का उदय जिसको है वो वेदनीय का अनुभाग जघन्य होता है, क्योंकि उसके लिए भी कंडीशन, एक तो उदयाभाव होने के कारण, उदय का अभाव किसका, साता का, क्योंकि असाता का उदय वाला जीव है, असाता का उदय है तो साता अनुदय रूप है, जिसको उदय का अभाव है, उसके कारण भवसिद्धि के द्विचरम समय में, यानी 14वें गुणस्थान के उपांत समय में साता वेदनीय के अनुभाग सत्व का विनाश हो जाता है, यानी सत्ता में से साता वेदनीय का अनुभाग जो उत्कृष्ट था वो नष्ट हो गया, क्योंकि साता वेदनीय ही नष्ट हो गई। और दूसरी बात, क्षपक श्रेणी में बहुत बार घात को प्राप्त हुए अनुभाग सहित, देखो हमने क्या किया, देखा था असाता वेदनीय कैसी प्रकृति, अशुभ प्रकृति है, जब हमने देखा था कि श्रेणी से शुरुआत से ही क्या होते हैं, स्थिति कांड घात और अनुभाग कांड घात होते हैं। स्थिति कांड घात तो शुभ अशुभ सभी प्रकृतियों में होते हैं, और अनुभाग कांड घात का अर्थ होता है अनुभाग का घटना। तो पहले अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण वगैरह में तो अनुभाग कांड घात होते थे, पर आगे चलकर अभी क्षपक श्रेणी है तो उसमें क्या होता है, अनु समय अपवर्तन, यानी कांड घात होने के लिए पहले पहले अंतर्मूर्त लगता था, अब अनुभाग का एक एक कांडक प्रमाण घात होने के लिए एक समय लगता है, यानी एक समय में अनंत स्पर्धक ऊपर वाले अधिक अनुभाग वाले उनका घात हो जाता है, दूसरे समय में और अनंत घात होता है, तीसरे समय में और घात, यानी टॉप मोस्ट जो अनुभाग वाले हैं अशुभ कर्म उसका प्रति समय, इसको कहते हैं प्रति समय अनंत गुणा घात होना। अभी समय कितने असंख्यात होगी श्रेणी में, अंतर्मूर्त वाली श्रेणी है, तो प्रति समय अनंत गुणा अनंत गुणा, अभी वहां पर भी हुआ और फिर उसके बाद बंध के रुकने के बाद, यानी उसके तो बंध तो था ही नहीं, उसका प्रति समय अनंत गुणा अनंत गुणा अनंत गुणा घटता गया, यही कह रही क्षपक के, क्षपक श्रेणी में बहुत बार घात को प्राप्त हुए अनुभाग सहित, बहुत बार यानी असंख्यात बार वो अनंत गुणा घटा, असाता वेदनीय का ही भवसिद्धि के अंतिम समय में सत्व देखा जाता है, यानी क्योंकि उसका असाता का उदय है, साता का उदय नहीं था और असाता भी प्रति समय अनंत गुणा घटते हुए बस नहीं के बराबर उसका अनुभाग यहाँ बराबर यहाँ प्राप्त है, इसलिए उसका सत्व जघन्य है।
मनीषा बेन, आपका प्रश्न था कि 14वें गुणस्थान में यानी तीर्थंकर को भी असाता वेदनी का उदय है, ये बराबर बात बैठती नहीं है। तो यहाँ क्या दिया है, उसका अनुभव अनंत अनंत हर समय अनंत अनंत अनुभव घटता है तो कुछ नहीं रहता है। मान लो आपने एक ग्लास में दूध का एक बूंद डाला तो क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। उसको बड़े इसमें डाला तो दूध का अंश तो है ना, लेकिन कैसा है, डाइल्यूटेड है। वो समुद्र में जाके डाला तो दूध का अंश है कि नहीं उधर, वो कैसा है, मोस्ट डाइल्यूटेड है। ऐसा ही असत वेदनी एकदम ढीला 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 कुछ इफेक्ट लेस हो जाता है।
कौन? हाँ, अशुभ कर्मों में, अशुभ कर्मों में अनंत गुणा घटता घटता चला जाता है। आपके क्या कहते हैं? नहीं देखो, अगर तीर्थंकर को साता कहेंगे तो जो हमने देखा था ना, साता का उदय मैक्सिमम कितने काल तक रहता है, ये हमने पहले कहीं पढ़ी थी बात, याद है? देखो नियम क्या है कि साता और असाता का एक अंतर्मुहूर्त में नियम से उदय में भी परिवर्तन होता है, बंध में भी होता है। अब बंध में तो विच्छित्ति हुई, असाता के बाद में तो साता ही का बंध है, वो तो नक्की है। परंतु अभी यहाँ अभी हम उदय की बात कर रहे हैं, तो उदय में हाँ वो अंतिम समय में उसका उदय होगा वो तो ठीक है, परंतु परंतु के पूरे तेरहवें के काल में हाँ ऐसा नहीं है। उनके चौदहवें में साता होगी वो तो ठीक है, परंतु क्योंकि देखो जो साता कर्मों का लगातार एक अंतर्मुर से अधिक उदय किस जीव के होता है, दो जीव है, जिसको असाता का उदय लंबे काल तक है और जिसको साता का उदय लंबे काल तक है। शायद इनको याद होगा अरविंद भाई को, हाँ 6 महीने तक, किसको, सहस्रार्ध, आप थी तभी, हाँ याद है, सहस्रार के किसी देव को, सबके नहीं, ऐसा कोई विरला जीव होगा उसके 6 महीने तक लगातार साता का उदय, उसके अधिक उदय साता का लगातार किसको नहीं। अगर तीर्थंकरों का होता तो कहते ना तेरहवें गुणस्थान वाले को होता है, परंतु ऐसा कहीं शास्त्र में नहीं आता है। एक बात, असाता का लगातार उदय अधिक से अधिक किसी जीव को 33 सागर के 7वें नरक में किसी जीव को होगा। वहां पर भी प्रश्न आता है तीर्थंकरों का जन्म होता है या नहीं, तीर्थंकर जीव का तब सभी साता रूप होते हैं एक समय के लिए, परंतु वो कोई उसका अपवाद होगा ऐसा जीव, क्योंकि 33 सागर में तो कितने तीर्थंकर होते होंगे ना, असंख्यात जीव जन्म लगातार है उसका, ऐसा कोई विरला जीव होता है। एक जीव को, बाकी सभी जीवों को अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में साता असाता का उदय, सभी जीवों को ऐसा कोई विरला होता है कि जिसको 33 सागर तक असाता का ही उदय है, ये हो सकता है किसी एक जीव को। यानी जो शास्त्र में जो बातें आती है और बाकी रेगुलरली सबको उदय अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में पलटता है। अब वो नरक में भी कई कैसा सोचता होगा कोई साता रूप, मैं तो कहती हूँ कि सामने वाले को मारकर भी साता रूप होता होगा वो नहीं समझे, या जो रैगिंग करते हैं या जो दूसरे को पीड़ा देते हैं अतिरेकी होते हैं वो हिंसा करके भी साता रूप मानते होगे कि नहीं अपने को, मैं अच्छा किया ऐसा कुछ मानते होगे हाँ वही तो हाँ आगे देखते हैं। यहाँ क्या देखा था हमने कि वो प्रति समय वो अनंत गुणा घटता 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 अंतिम समय में उसका जघन्य सत्व बाकी है और वो अकेले ही प्रकृति है। साता रूपांत समय में क्षय हो चुकी, अब अंतिम समय का साता है और वो भी कैसा है, नहीं के बराबर सत्व है, यानी मिनिमम है वहां पर। अब फिर शंका, असाता वेदनीय का वेदन करने वाले, इसका अर्थ क्या है, केवली को भी असाता का उदय है तथा क्षुधा तृषा आदि 11 परिषयों द्वारा बाधा को प्राप्त हुए ऐसे, क्योंकि केवली के एकादश जिन्हें ऐसा सूत्र है, केवली के 11 परिषय माने हैं परंतु तो कर्मों की उदय अपेक्षा माने हैं। तो ये शंकाकार क्या पूछा है कि जिसको ऐसे 11 परिषय द्वारा बाधा को प्राप्त हुए ऐसे सहयोगी केवली भगवान के भोजन का ग्रहण कैसे नहीं होगा, ये प्रश्न है। उनके भी कवलाहार होना चाहिए, ये उनका प्रश्न है।
देखो ऐसा मुनि की अवस्था में 22 परिषय होते हैं, केवली को सहयोग केवली को 11 होते, ये बात बता रहे।
जहाँ जो कर्म उदय रूप है ना, उस अपेक्षा से वहाँ वो परिचय बताए जाते हैं। परंतु ये तो परिचय जयी है, वो कर्मों का उदय बताना इतना ही प्रयोजन है। ना केवली को कोई क्षुधा लगती है, ना कोई तृषा, न कुछ। भले असाता वेदिनी उदय रूप है, परंतु वो नहीं के बराबर उसका उदय, एक बात। और उदीर्णा ना साता की होती है ना असाता की, कौन से गुणस्थान के ऊपर? छठे गुणस्थान में उदय की उदीर्णा की उच्चित्ति होती है, आयु की भी और वेदनी की भी। यानी उदीर्णा तीव्र उदय जो है वो आगे के गुणस्थानों में है ही नहीं। अरे सातवें गुणस्थान वाले को भी आहार संज्ञा नहीं कही, आहार संज्ञा छठे तक बताई। प्रवृत्ति को मत देखो, आहार संज्ञा की बात है, वो सातवें में नहीं है। तो अभी उदीर्ण है तीव्र उदय हो, उदीर्णा का ये अर्थ होता है कि ऊपर के निषेकों के परमाणु अपनी जगह छोड़कर जल्दी उदय में आते हैं। तो वहाँ उसका तीव्र उदय होता है, अनुभाग तीव्र होता है। कितने परमाणु उदय में आए उससे मतलब नहीं है, उसका तो अनुभाग अधिक रूप से उदय में आता है। जैसे हम आपको, आपको मालूम होगा, बच्चे आपकी खेल रही है, टीवी देख रही है, जो कुछ है ये इधर इधर कर रही है, और बुलाया चलो भोजन को, भूख नहीं है मम्मी अभी, तो इतने में क्या होता है, पांच मिनट में भूख बहुत लगी है, जल्दी दे दो, कहाँ गई वो उसकी भूख, कहाँ से आ गई। तो वहाँ तीव्र उदय उदीर्णा होती है, तो वहाँ उसके तो ये क्षुधा तृषा जो रोग वगैरह जो है उसमें ये निमित्त रूप से बताया जाता है, वो कुछ कराते ऐसी बात नहीं है। परंतु ऐसी उदीर्णा तो छठे के ऊपर है ही नहीं, एक बात। दूसरी बात, ये भी हमने देखा था क्षपक श्रेणी में भी इतना अनुभाग अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना घटा है, वो नहीं के बराबर है। तीसरी बात, मोहनीय है ही नहीं है, तो अभी उसका ये दुख रूप परिणाम हो जावे और उसका इलाज करे और भोजन ग्रहण करे, ये बात कहाँ से आई? ये जानबूझकर आचार्य स्वयं ही ऐसा प्रश्न उठा रहे। क्यों? क्योंकि श्वेतांबर मान्यता है ऐसी कि वो उनके केवली को भी कवलाहार होता है, कवलाहार है नहीं, उनसे जो भोजन करते हैं, परंतु वो बात सही नहीं है। ये अभी कर्णान योग के द्वारा यहाँ प्रश्न इसीलिए पूछ रहे। देखो, असाता वेदिनी का वेदन करने वाले, जिसको असाता का उदय है, तथा क्षुधा तृषा आदि 11 परिषयों द्वारा बाधा को प्राप्त हुए। ये 11 परिषय ही इसलिए बताया है क्योंकि वो वेदिनी के असाता का उदय है, इसलिए 11 का नाम बताया है उसको उदय बताने के लिए। वैसे उनकी भूख लगती है वगैरह ऐसा कुछ नहीं है वहां पर। ऐसे सहयोगी भगवान के, सहयोग केवली भगवान के भोजन का ग्रहण कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, इन्हें होना चाहिए, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। यानी जानबूझकर ऐसा प्रश्न आचार्यों ने पूछा है शंकाकार के मुंह से। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो भोजन पान में, पान यानी वो पीने की जो इच्छा, उत्पन्न हुई इच्छा से मोह युक्त है। क्या कहा? ये कुछ ग्रहण करने के, यानी खाने की पीने की इच्छा है, यानी वो मोह युक्त है। तथा मरण के भय से जो भोजन करता है, एक तो खाने पीने की इच्छा है यानी मोह से सहित है, और भोजन क्यों करता है? अरे नहीं तो मर जाऊं, तो मरण के भय से जो भोजन करता है, अतएव परिषहों से जो पराजित हुआ है, ऐसे जीव के केवली होने का विरोध है। क्या कहते हैं? ये तो मुनियों को परिषह जय है। क्या कहा? मुनियों को भी परिषह जय है, और अगर ये परिषहों से जो पराजित हुए हैं, ऐसे अगर कोई जीव होगा तो वो केवली नहीं हो सकता, और तो मुनि भी नहीं रहेगा। तो कहते ऐसे परिषहों से जो पराजित हुआ है, ऐसे जीव के केवली होने का विरोध है। संकलेश के साथ अविनाभावी रखने वाली, अविनाभाव रखने वाली क्षुधा से, क्या कहते हैं? क्षुधा के साथ क्या है? संकलेश का अविनाभाव है। जहाँ क्षुधा है वहां संकलेश परिणाम हो रहे हैं। हमने ऐसे भी देखे, मेरे पेशेंट थी एक, हाँ मारवाड़ी, कोई जैन मारवाड़ी थी, उपवास कर दिए थे, और उपवास किया, अभी खाना पीना तो कुछ है ही नहीं, तो विजिट को बुलाया और वो जोर जोर से चिल्लाए, हाय महावीर, हाय महावीर, हाय महावीर, इधर उधर लोट पोट करे। कहते क्यों, ये क्यों हो रहे? उपवास है, उपवास है, सहा नहीं जाता है। यानी इतना तीव्र संकलेश कर रहे हैं और मान रहे कि हम तप कर रहे हैं और निर्जरा हो रहे हैं और हम क्या क्या। अरे तो इससे अच्छा है कि बिना कुछ ऐसे संकलेश करके स्वाध्याय कर को ना बराबर, तत्व विचार करने वाले को ही सम्यक तो होता है, और ऐसे ही अज्ञान पूर्वक जो मान्यता के साथ जो कुछ अभी कुछ करना नहीं, तो हमको बुलाया क्यों, क्योंकि कुछ पीना तो नहीं, नहीं कुछ खाना ही नहीं ना, कुछ सलाम लगा सकते हैं ना कुछ करना है, बस उसको देखने के लिए बुला लिया हमने तो हाय महावीर करते करते बैठी थी। या क्या कहते, संकलेश के साथ अविनाभाव रखने वाली क्षुधा से जलने वाले के भी, अभी ऐसे जलने वाले तो मुनि भी नहीं कहलाएंगे, साधारण श्रावक भी ऐसे ऐसे तो संकलेश से नहीं, क्योंकि मन का निग्रह भी करके अभी हमने सोच लिया तो ऐसे तीव्र संकलेश भी नहीं होते हैं, तो उसके केवलीपना बन जाता है। इस प्रकार यह दोष, ये दोष समान ही है। क्या कहा, ऐसे संकलेश के साथ जो क्षुधा होती है और वो केवली के होती है ऐसा मानना ये बहुत बड़ा दोष है। तो कहते ऐसा भी समाधान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने सहायक घातिया कर्मों का अभाव हो जाने से, क्या कहते हैं, जो वेदनीय का सहायक कौन है, घाती कर्म, तो उसका तो नाश हो गया, अशक्तता को प्राप्त हुए, असाता वेदनीय के उदय से क्षुधा तृषा की उत्पत्ति संभव नहीं है। ऐसा नहीं कि क्षुधा तृषा होती है और वो सहन कर रहे, ऐसी भी नहीं है, उनके होती ही नहीं, क्यों, वो असाता इतना मंद है एक बात, दूसरी मोहनी के उदय के साथ ही उसका कुछ असर होता है, नहीं तो उसका असर ही नहीं है, वो तो ढेर मिट्टी के ढेर के समान है, ना उसका कोई साता रूप और ना असाता रूप फल है। इसलिए जो प्रश्न उठता है ना, केवली के तो असाता का उदय कैसे हो सकता है, साता का होना चाहिए, साता का हो या असाता का हो कुछ उसका काम ही नहीं वहां पर, मोहनी ही नहीं है। अब यही रुकेंगे, क्योंकि शंकाकार की शंका तो रुकने वाली नहीं है, आगे की शंका कर लेंगे। जावाणी की ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तकनम सदा ते कहो।